हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जुबान संभाल कर बात करो कबीर, होश में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें बोलने लायक भी ना छोड़ूं। जैसे ही झलक ने इतने खतरनाक अंदाज में ये कहा, कबीर के दांत सच में आपस में बजने लगे थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त आदित्य के साथ होगा। उसे तो लगा था कि झलक का सच सामने आने के बाद आदित्य उससे बात करना तो दूर, उसे कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो आदित्य उसी के साथ था और यही बात उसे पूरी तरह हैरानी में डुबो गई थी। वहीं अब कबीर इस तरह अपना गुस्सा झलक पर उतारते हुए बोला, देखो मिस मल्होत्रा, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे कितने सारे राज दफन किए हुए हैं। लेकिन हमारी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा किसी भी तरह का ड्रामा यहाँ नहीं चलने वाला है, और मैं तुम्हें आदित्य की ज़िंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने दूंगा, समझी तुम? जैसे ही उसने इस तरह की बातें की, झलक ने हल्की लेकिन शांत आवाज़ में कहा था, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। जैसे ही झलक ने कबीर से ये बात कही, कबीर खुद हैरान रह गया और सोचने लगा, वो मुझसे मिलने क्यों आ रही है, भला उसे मेरा क्या लेना देना। वहीं दूसरी ओर कबीर ने अब देर ना करते हुए तुरंत अपना गुस्सा अनामिका पर उतार दिया। झलक का फ़ोन काटने के बाद उसने तुरंत अनामिका को फ़ोन लगा दिया और उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अब तो अनामिका पूरी तरह से सन रह गई। वो बोली, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो और क्यों मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो? मल्होत्रा सिस्टर्स क्या लगा रखा है तुमने? खबरदार जो मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला तो। तभी कबीर गुस्से में बोला, देखो तुम्हारी बहन वैसे भी मुझसे मिलने के लिए आ रही है, क्योंकि मैंने उसे अच्छी खासी सुनाई है। और याद रखना, मैं तुमसे या तुम्हारी बहन से नहीं डरता, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे दोस्त की ज़िंदगी में दोबारा से इस तरह का इंटरफेयर तुम लोगों ने करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन के कैरेक्टर को। तुम्हारी बहन मेरे ऑलरेडी कज़िन भाई के साथ सो चुकी है और आकांक्षा ओबेरॉय की जगह अब अपना नाम झलक मल्होत्रा बता रही है। लेकिन हमारी एक बात कान खोल कर सुन लो, हम उसे इस तरह से कभी भी आदित्य की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उसे आदित्य की ज़िंदगी में आने का कोई हक नहीं है। ये बोलते हुए गुस्से में कबीर ने फ़ोन काट दिया। वहीं अनामिका कबीर के मुंह से आकांक्षा का नाम सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिरकार कबीर कर क्या रहा है और इस तरह की घटिया बातें क्यों कर रहा है। फिलहाल उसने जल्दी से दादाजी को इन सारी बातों के बारे में बता दिया। अब जैसे ही दादाजी ने सारी बातें सुनी, वे भी पूरी तरह हैरानी से भर गए। उन्होंने कहा, बेटा कहीं देर ना हो जाए, हमें अभी इसी वक्त राणा मेंशन के लिए निकलना होगा। ये कहकर वे अनामिका को लेकर निकल पड़े। साथ ही सौरभ और आरव को भी साथ ले लिया। स्नेहा को उन्होंने घर पर ही रोहन का ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। सौरभ जी ने कहा भी था कि वो भी साथ आएंगे। पहले तो स्नेहा जी ने मना किया, लेकिन फिर उनकी जिद और बात मानकर उन्होंने सौरभ को भी साथ आने दिया और सभी के सभी राणा मेंशन के लिए रवाना हो चुके थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि झलक वहां पहुंचकर अपना गुस्सा किसी पर भी उतार दे। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ के लिए ये रात पूरी तरह भारी पड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार झलक का उसका हाथ पकड़ना घूम रहा था। उसका गुस्सा पूरी तरह बढ़ चुका था। उसने तय कर लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, अगली सुबह वो फिर से उसके इंडस्ट्री जाएगा और झलक से एक बार बात करेगा और उसे ये बात एक बार फिर साफ साफ समझाकर वापस लौट आएगा। वैसे भी दादी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि झलक जैसे नाजायज रिश्ते की कोई हैसियत नहीं होती। इन्हीं सोचों के साथ उसने ड्रिंक पर ड्रिंक करनी शुरू कर दी। जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा पीने के बाद वो निढाल होकर वहीं पड़ा था, क्योंकि इस वक्त सिद्धार्थ बिना किसी को बताए झलक को खोजने यहाँ आया था। केवल रोनित को ही इस बात का पता था, लेकिन उसने उसे सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। दादी को तो यही लगा था कि सिद्धार्थ किसी ज़रूरी काम से दो दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में गया है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि असल में उसने झलक का पता लगा लिया है और वो उससे मिलने आया हुआ है। फिलहाल वहीं दूसरी तरफ आदित्य हैरानी से गाड़ी में बैठी झलक को देख रहा था। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। किस भरोसे उसने कबीर से इतनी आसानी से कह दिया कि वो उससे मिलने आ रही है? आखिर करना क्या चाहती है? आदित्य की आंखें झलक के चेहरे पर टिकी थीं और झलक खामोश बैठी थी, जैसे उसके भीतर कोई तूफान चल रहा हो जिसका अंदाज़ा अभी किसी को भी नहीं था। लेकिन कभी कभी आदित्य उसे कुछ कहना चाहता था, उससे कुछ सवाल करना चाहता था, पर झलक एक बार फिर से अपने फ़ोन पर ही व्यस्त हो गई और उसने एक बार भी आदित्य की ओर नहीं देखा। आदित्य का तो दिल कर रहा था कि वो अपनी कार के बोनट पर हाथ पटक पटक कर स्टीयरिंग तोड़ दे। आखिरकार कैसी लड़की से उसे प्यार हुआ है, जिस लड़की को कुछ भी बोलने का या किसी भी चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है? आखिर चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? आदित्य जितना झलक के बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर पहुँच नहीं पा रहा था और ना ही उसके बारे में सही अंदाज़ा लगा पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अब कबीर गुस्से से भरा बैठा था। उसने अपने गुस्से की आग दादी जी के अंदर भी भर दी थी। उसने बलबीर दादाजी को सारी बातों के बारे में बता दिया था। उसी लड़की की वजह से आप हॉस्पिटल गए थे सर। उस लड़की का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और याद है उसके दादाजी ने क्या कहा था कि उसकी दूसरी जिंदगी है, क्योंकि वो पहले किसी और के साथ रह चुकी है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने है। ये बोलकर उसने अभय को खड़ा कर दिया। अभय थोड़ा सा सहमा हुआ दादाजी के सामने खड़ा हुआ और बोला, दादाजी मेरा इरादा उसके साथ कुछ गलत करने का नहीं था। मैं तो उससे शादी करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसे मुझ में क्या कमी नजर आई कि उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मुझे ठुकराकर चली गई। ये सुनकर दादाजी गुस्से से भर बैठे। उन्होंने तुरंत कहा, दिग्विजय को फोन लगाओ, उसकी पोती के कैरेक्टर के बारे में उसके दादाजी को सारी बातें पता होनी चाहिए। सभी को अलग अलग तरीके से गुस्सा आ रहा था। बालवीर जी तो दिग्विजय जी के साथ मिलकर झलक और आदित्य को एक करना चाहते थे। अलग अलग तरीके से वे लोग प्लान बना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कबीर की बातों के मुताबिक झलक के तो कितने ही आदमियों के साथ अफेयर रह चुके हैं। अपनी इन्हीं गलतफहमियों के चलते वे दिग्विजय जी को फोन करके सारी बातें सुनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दिग्विजय जी तो खुद वहीं आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे ये बताइए मिस मल्होत्रा, मैं आपको कहाँ छोड़ूं? आप कहाँ जाना चाहती हैं? क्या आप मेरे साथ राणा मेंशन चल रही हैं या आपको मल्होत्रा मेंशन जाना है? झलक ने एक नज़र उठाकर आदित्य को देखा और बोली, अपने घर चलो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा पागलपन था। ये सुनकर आदित्य केवल दांत भींच कर रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की पर कितने सारे इल्ज़ाम हैं, लेकिन इसकी आंखों में कोई गलती नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या है आखिर इसका सच? फिलहाल उसने गाड़ी राणा मेंशन की ओर मोड़ दी।
वहीं दूसरी ओर आर्यन अपने विला में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी सोच छाई हुई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि झलक इस तरह वहां आएगी, और अब झलक को आदित्य के साथ देखना उसे अजीब सा लग रहा था। उसे सबकी बातें सुनकर भी अजीब लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि झलक ऐसा कर सकती है। वो तो कभी किसी आदमी की ओर आकर्षित भी नहीं होती थी। वो खुद भी कम अमीर या कम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने कभी भी दोस्ती से ज्यादा उसे अहमियत नहीं दी। तो फिर वो किसी और के साथ इस तरह के रिश्ते में कैसे रह सकती है? जरूर इसके पीछे कोई कारण है, आर्यन ने मन ही मन ठान लिया। मुझे इसका सच पता लगाना ही होगा। जल्दी ही उसने किसी को मैसेज किया ताकि उसे झलक के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। उसने तय कर लिया था कि वो अपने पिता की इस बार कोई बात नहीं मानेगा। जितना हो सकेगा उतना वो झलक की मदद करेगा और उसे ढूंढेगा। उसे खबर मिल चुकी थी कि खुराना परिवार और साथ ही साथ ओबेरॉय परिवार झलक की जान के पीछे पड़े हैं और उसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब आर्यन झलक के साथ खड़ा होना चाहता था। जो गलती वो पहले कर चुका था उसे वो दोहराना नहीं चाहता था। इसी सोच के साथ उसने झलक को ट्रेस करवाना शुरू कर दिया। फिलहाल कुछ देर बाद आदित्य ने गाड़ी राणा मेंशन के ठीक सामने रोक दी। गाड़ी रोककर उसने झलक को तिरछी नज़रों से देखा। उसे लग रहा था कि शायद झलक वहां जाकर किसी से माफ़ी मांगेगी या उससे सवाल करेगी। देखते हैं अब ये क्या करने वाली है। इसी सोच के साथ वो भी गाड़ी से नीचे उतर गया। झलक ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बेपरवाही से अपना फ़ोन पर्स में डाला और सीधे पावरफुल अंदाज में राणा मेंशन के अंदर चली गई। वहीं बालवीर जी ने जैसे ही झलक को अंदर आते देखा वे हैरान रह गए, क्योंकि जिस लड़की पर अभी कुछ देर पहले तक इल्ज़ामों की बारिश हो रही थी वही लड़की अब सिर ऊँचा करके उनके सामने खड़ी थी। तैयार रहिए दोस्तों झलक का धमाल देखने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करें, सब मज़ेदार ही होगा। और हाँ दोस्तों, दिल से थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दोस्तों।